તારીખ 17/6/1992 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા હૈદરાબાદમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 46.
માત્ર સ્વભાવ થી તો નેત્ર ને જાય છે, એટલે એ તો દ્રષ્ટાંત છે અને જ્ઞાન છે એ સિદ્ધાંત ની વાત. નેત્ર દ્રષ્ટાંત ના સ્થાને છે અને જ્ઞાન સિદ્ધાંત ના સ્થાને. આમાં એમાં એમ લીધું છે, જ્ઞાન માત્ર જાણવાના સ્વભાવ વાળું છે. કેવળ જ્ઞાન માત્ર સ્વભાવ વાળું હોવાથી કર્મના બંધને, મોક્ષને, ઉદયને અને નિર્જરાને, કર્મની ચાર પર્યાય લીધી. એ કર્મ બંધાય છે, છૂટે છે, ઉદયમાં આવે છે, નિર્જરી જાય છે. તો કર્મની સર્વ અવસ્થાને એ માત્ર જાણે છે, પણ કોઈ અવસ્થાને, કર્મની કોઈ અવસ્થાને એ કરતું નથી. નેત્ર બધું જાણે પણ નેત્ર કોનું કાર્ય કરે? નેત્ર કોઈ જાણે છે, ના કરતું નથી, કરતું નથી, જાણે. જ્ઞાનનો સ્વભાવ માત્ર જાણવો, બધું પોતાનું કામ. પછી જે કઈ નહીં હોય છે જાણે, આ ચારે પ્રકાર ને જાણે કરવા કરવાની વાત છે. અવલોકન થી સમજાયું છે, અવલોકન થી બહુ સરસ રીતે સમજાય. તો જ્ઞાન શું કરે છે? આપણે પોતાનું જ્ઞાન પોતાનું જ અવલોકન કરે. જ્ઞાન પોતાનું અવલોકન કરે તો એને ખબર પડે એવું છે કે જ્ઞાન જાણવા સિવાય કઈ કરી શકતું જ નથી. એની મર્યાદા પૂરી થાય છે, જાણવામાં સમાપ્ત થઈ જાય છે. કર્મનો પ્રશ્ન જ કઈ નથી, જાણવા સિવાય એનું કોઈ કાર્ય નથી, એથી આગળનું એનું કાર્ય નથી. અને જો મોક્ષ ને કરે તો પણ બંધ નહીં કરે. જો મોક્ષ ને કરે તો બંધ ને શું કરવા ન કરે? સમજાવી દો તો. બંધ ને શું કરવા ન કરે અને બંધ ને કરે તો બંધ છૂટે કે દેશે? એટલે જ્ઞાન નું કાર્ય જાણવાનું છે. એમ કહીને સર્વ વિશુદ્ધ જ્ઞાન અધિકારમાં આચાર્ય મહારાજ ને, ત્રિકુંડાચાર્ય મહારાજ જે શાસ્ત્ર રચના રચયિતા મહારાજ છે, એ તો એમ જ કહે છે કે બસ આત્મા જ્ઞાતા છે અને જ્ઞાતા ભાવે રહેવું તે નિજ ધર્મમાં રહેવાનું છે, અને ઉલ્લંઘન કરવું તે ધર્મને છોડવાની વાત છે. સર્વ વિશુદ્ધ જ્ઞાન છે જ્ઞાતા માત્ર. જ્ઞાતા માત્ર થયો એટલે વિતરાગ થયો. આત્મ સ્વરૂપ એને સમજાવવા માટે બધી વાતો છે. સીધી વાત તો એ છે કે આત્માજ્ઞા કારણે તપાસ કરો, શું કરી શકો, એ સિવાય કરી પણ શું શકે છે. અવલોકન કરે તો વિશ્વાસ કરતી કે આવે એવું છે કે નાર એટલી જ વાર છે, અવલોકન કરે એટલી જ વાર છે પ્રકૃતિ આવવા, એટલી ગ્રહે વાર ના લાગે. ચર્ચા રાખે અવલોકનમાં તો બધું આવી જાય છે. અવલોકનમાં જે કઈ જ્ઞાનમાં જ્ઞાન પણ જણાય અને જ્ઞાનમાં જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન ને જ્ઞાનાકાર જ્ઞાન બધું આવી જાય છે. જે ભાવો અનુભવ યોગ્ય છે તે બધાનું અવલોકન થઈ જાય. અનેક અનુભવમાં આવતા અનેક ભેદભાવોથી વિસ્તૃત છે પોતે. હવે એનું અવલોકન કરે ત્યારે તો પહેલા તો એને એમ લાગે બધું ભળી ગયું છે, રાગ ને જ્ઞાન ક્યાંય જુદા પડતા છે, તો એને મિશ્રિત અવસ્થા કહી દીધી. પણ અવલોકનનું પ્રેક્ટિસ એવી ચીજ છે કે જેની અંદર જે હોય તે જણાય, પછી રાગાદી ભાવ જ્ઞાન રૂપ નથી એમ જણાય છે. જ્ઞાન સ્વ પણ જણાય છે અને બાકીનું બધું પર પણ જણાય છે. ઉપયોગમાં બને છે, શુદ્ધ ઉપયોગ થાય ત્યારે નથી જણાતો, પણ ત્યારે હોતો નથી. પણ જયારે શુદ્ધ ઉપયોગ થાય છે ત્યારે અનુભવ તરફ ચાલે છે અને ઉપયોગથી અનુભવ ગોચર થાય છે. અનુભવ ગોચર થાય એટલે શુદ્ધોપયોગ જબ હોતા હૈ, તો શુદ્ધોપયોગ કે કાલ મેં બુદ્ધિપૂર્વક કા રાગ થી ઉત્પત્તિ હોતી નહીં, તો જબ વો હૈ નહીં તો જણાયગા કહાં સે, જબ હૈ નહીં તો જાનને કા સવાલ નહીં રહેતા. ઓર અબુદ્ધિપૂર્વક તો કેવ ડી ગમ્ય હોતા, ઉનકો જાનને કા સવાલ નહીં રહેતા. ઇસલિએ વહાં એકાકાર અસ્થિ છે, તો અપના એકાકાર આત્મા કો હી જાના, પર અપના સિર્ફ અપના આત્મા કો જાના ઉસમે અનર્પિત રૂપ સે કિસી કો નહીં જાના, ઇસકા મતલબ કે હૈ નહીં એસા જાના, દૂસરા કુછ નહીં હૈ એસા જાના, હૈ નહીં ઇસલિયે જાનને મેં નહીં આતા, હોવે તો જાનને મેં આતા હૈ, હોવે તો જ્ઞાન વો જ્ઞાન મેં જે હો જાતા હૈ, લેકિન પરગ્ને હો જાતા હૈ, પગ્ને નહીં હોતા જ્ઞાની કો. જ્ઞાની જ્યાં તક વિતરાગ નહીં હુએ ત્યાં તક ઉનકો ભી રાગ કી ઉત્પત્તિ તો હોગી ચારિત્ર ગુણ મેં, તો વો રાગ કો પરગ્ને જાનતે હૈ, સ્વગ્ને નહીં જાનતે. એસી બાત હૈ, પર્ગ નહીં જાણતા, તો પર્ગ નહીં જાણતે તો ઉસમે કોઈ દોષ નહીં હૈ. દોષ તો સ્વગ્ને રૂપ જાણને સે હોતા હૈ, સ્વય રૂપ જાણને સે દોષ હોતા હૈ, પર્ગ નહીં જાણને સે દોષ નહીં હોતા. એસી બાત. ઓર જો જ્ઞાન મેં જ્ઞાન હી જાણને મેં આતા હૈ, દૂસરા કુછ નહીં જાણને મેં આતા હૈ, એસા ભી એક શાસ્ત્ર વચન તો હૈ. ઉસમેં ક્યા બાત હૈ, નિજ મેં નિજ કી દ્રષ્ટિ સે જ્ઞાન મેં દેખતે હૈ, દ્રષ્ટિકોણ એક બદલતે હૈ હમ અબ ક્યા, કે મેરે જ્ઞાન મેં કોણ હૈ, કે મેરે જ્ઞાન મેં મેં હી, तो मेरे निज को देखने का एक दृष्टिकोण मैंने ग्रहण कर लिया। ज्ञान में मैंने निज को देखने का एक दृष्टिकोण अपनाया। इस दृष्टिकोण अपनाते मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि निज में निज ही है, निज में पर नहीं है। तो निज में निज ही जानने में आया, क्योंकि निज में निज है। और मिथ्यात अवस्था में क्या होता था कि निज में पर है ऐसा अनुभव होता था। वास्तव में तो निज में पर का प्रतिबिंब था ज्ञान में, लेकिन निज में पर है ऐसा दृष्टिकोण होता था तो निज में निज जानने में नहीं आता था। और निज में निज को जानने का दृष्टिकोण को ग्रहण करते हैं तो निज में निज ही जानने में आता है, निज में पर है ऐसा जानने में नहीं आता है। तो नहीं है तो नहीं जानने में आवे, होवे तो होवे जानने में आवे, इसमें क्या है? वो तो सही बात है। इसका दृष्टांत बहुत सुंदर दिया है अनुभव प्रकाश में। अनुभव प्रकाश में कहते हैं कि एक मोर है, वो कला करके नाचता है, और जब वो कला करके नाचता है तो बहुत सुंदर दिखता है, और अरिसा में उसका प्रतिबिंब कांच में दर्पण में पड़ता है। तो दर्पण में नाचता हुआ मोर देखते हैं तो दर्पण को चूक जाते हैं। क्या? दर्पण को चूक जाते हैं। और जब दर्पण में दर्पण ही है ऐसा देखने को जाते हैं तो मोर जानते हुए भी गौण इतना हो जाता है कि हम तो दर्पण को देखते हैं, क्योंकि दर्पण में मोर नहीं है, दर्पण में दर्पण ही है, सिवा दर्पण कुछ होता ही नहीं वहां, और रहने की जगह ही नहीं। ठीक बराबर ऐसा ज्ञान का है कि ज्ञान में पर पदार्थ का प्रतिभास रूप ज्ञानाकार कोई उत्पन्न होता है विभिन्न प्रकार का, लेकिन हमारा दृष्टिकोण देह को जानने का है या हमारा दृष्टिकोण ज्ञान को जानने का है? वहां तो ज्ञान सिवा और कुछ है ही नहीं। जब हमारा दृष्टिकोण ज्ञान को जानने का है तो उसमें ज्ञान ही झलकता है कि ज्ञान ही है, एकाकार ज्ञान सिवा कुछ नहीं, क्योंकि दूसरा कुछ वहां है ही नहीं। हाँ, दृष्टिकोण सही सगमस्त अवस्था में तो यही होगा। इस दृष्टिकोण से आप जानते हैं, उसी पर आपके परिणमन आधारित है। क्या? तो हम ज्ञान को ज्ञान है ऐसा जानने का दृष्टिकोण रखते हैं, ज्ञान में ज्ञान स्वरूप हम है ऐसा जानने में आता है, और ज्ञान में आकृति हुई, और हमारा लक्ष्य ज्ञान में ज्ञान को जानने का नहीं है, तो हम ये रूप अपने को अनुभव करेंगे जो मिथ्या है, क्योंकि ये रूप तो हम है ही नहीं, ज्ञान स्वरूप है ऐसा। ये ऐसी बात है। दृष्टि अपेक्षा से बात, मैंने दर्शन अपेक्षा से बात नहीं है, दृष्टिकोण मैंने देखने का व्यू पॉइंट एंगल जिसको कहते हैं, उसको दृष्टिकोण कहते हैं अपनी चालू भाषा में, और उसको ही नई ज्ञान कहते हैं। इसलिए शुद्ध नया सृत जो है वो शुद्ध स्वरूप का अनुभव कराती है, और अशुद्ध नया सृत शुद्ध भाव अनुभव में आता है। ये बात रही जानने के विषय में, और जानने के विषय में ऐसे भेदभाव अनेक प्रकार के विभिन्न कथन विवक्षा और अनेक प्रकार के पर्यायों में बात जब समझ में नहीं आती है तो उसमें भ्रम होने की गुंजाइश है, अवकाश है। इसलिए बनारसी दास जी ने ऐसा गाया के स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी ताते भेद भ्रम बहुत भारी, तो इसमें कभी घुसपण भी होती है। इसलिए इस विषय को सरल करने के हेतु हमें ज्ञान में जो वेदकता है यहां से भेद ज्ञान करना मुख्य तौर पर, क्योंकि वेदन है वो अनुभव रूप पर्याय है ज्ञान के, और हमारा प्रयोजन भी स्वानुभव करने का है। हमारा प्रयोजन सिर्फ जानकारी करने का नहीं है, तो ये जानना नहीं जानने की बात आती है जानकारी की, और हमारा प्रयोजन उतना मात्र नहीं है। हम समझ करने के लिए जानकारी कर ले वो दूसरी बात है फर्स्ट स्टेज में, लेकिन आगे हमारा प्रयोजन तो अनुभव करने का है, और ज्ञान में भी अनुभव करने का धर्म है वेदन करने का। तो हम उसको अवलोकन में ले ले रहे तो अनुभव आसान हो जाता है, क्यों कि वेदन दूसरे का हो ही नहीं सकता। वेदन धर्म में दूसरों का कोई भी निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं। ज्ञान में तो अन्य ज्ञेय का निमित्त नैमित्तिक ज्ञान विशेष के साथ अवश्य है, ज्ञान सामान्य के साथ, और ज्ञान सामान्य में तो ज्ञान वेदन होता है अकेला, वहां तो ज्ञेय का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं। इसलिए इस विषय को सरल करने के लिए हमें ऐसा कहना चाहिए या समझना चाहिए कि ज्ञान स्वपर को जाने भले, लेकिन ज्ञान पर को वेदता नहीं। सिर्फ ज्ञान स्वयं को ही वेदता है किसी भी हालत में, विचात्र हालत में भी वो दूसरे को नहीं वेद सकता, फिर सम्यक्त्व में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए वेदन पर हमें जाना है तो ये ज्ञान सामान्य का वो भाव होने से आसानी से वो ग्रहण नहीं होता, पर उपयोग नहीं जाता। ग्रहण मैंने उस पर उपयोग हम ले जाना चाहे तो नहीं जाता, तो हमें अवलोकन का प्रैक्टिस करने से उपयोग आ जाएगा कि वेदन क्या चीज है ज्ञान में। इसलिए अवलोकन के प्रैक्टिस या प्रयोग इसलिए जरूरी है कि हमें पहुंचना है ज्ञान वेदन तक, और वेद ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने में तो जानकारी से होगा, और वेदकता में अनुभव से होगा। तो वेद ज्ञान अनुभव से करना है कि सिर्फ वेद ज्ञान का जानकारी करना है? जानकारी करना है। स्वपर प्रकाशक में पर है, वो पर है, जानने परग नहीं है, स्वग नहीं है, वो स्व है। तो स्वपर प्रकाशक में स्व स्वरूप ज्ञात होता है, पर रूप ज्ञात होता है रागादि पर, रूपी पर वो राग राग का विषय, लेकिन वो एक जानकारी का विषय होता है, और वो स्वविकल्प दशा में वहां तक उसकी मर्यादा होती है। अब हमें अनुभव करना है, हमारा कार्य वहां पूरा नहीं होता, तो हमें तो अनुभव करना है, तो हमें वेद ज्ञान वेदन तक जाना चाहिए। तो हमें ज्ञान की वेदकता से ज्ञान का अनुभव करना चाहिए कि ये स्वयं का अनुभव है जिसमें, तो उसमें वेदकता के साथ व्याप्ति जो है उसका भी अनुभव होगा कि हमारी सीमा हमारे ज्ञान में व्यापक रूप से भी खत्म होती है। राग में हमारा ज्ञान व्यापक रूप भी नहीं, और राग के विषयभूत पदार्थ साता असाता के शरीर के पर्याय में भी हमारा ज्ञान की व्याप्ति नहीं होती, व्याप्ता नहीं है। वेदन और व्यापकता की अच्छी तरह प्रैक्टिस होने लगी भीतर में, तो एक और चीज नजर आती है, वो प्रत्यक्षता की नजर आती है। अरे ये ज्ञान वेदन है, तो उस ज्ञान में ज्ञान का वेदन है, वहां तो बीच में कोई मन का भी माध्यम या निमित्त पड़ा नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में पांच इंद्रिय और छठे मन में उद्गल का बीच में निमित्त है, इसलिए ज्ञान को परोक्ष कहा है। लेकिन ज्ञान में ज्ञान वेदन स्वयं होता है, उसमें तो कोई किसी का भी निमित्त नहीं है, मन का भी नहीं है, इंद्रियों का तो हो ही नहीं सकता, मन का भी नहीं है। तो जहां बीच में कोई नहीं होता वहां परोक्षपणा भी नहीं रहता। तो ये तो थियोरेटिकल बात हुई कि प्रत्यक्षपणा वहां है, लेकिन अवलोकन में ये प्रत्यक्षता अवलोकित तो होती है, तब सिर्फ एक अंश का प्रत्यक्षपणा उसमें नजर आने से अनंत पूरी सोने की खान एक पत्थर में दिखती है, एक सुवर्ण पत्थर में पूरी सोने की खान दिख जाती है। तो अनंत प्रत्यक्ष में हूं, इस प्रत्यक्ष अंश वेदन गोचर है, ऐसा मैं अनंत प्रत्यक्ष हूं, ऐसा जब पता चल गया कि एड्रेस मिला आत्मा का पहुंचने के लिए, कि ये पता है, अब मैं और जगह ढूंढने का नहीं है, तो उपयोग हो जाता है, वहां पहुंच जाता है, इतना बल आता है। फिर प्रत्यक्षता भाषित होते हुए ही उतना बल आता है, उतना बल आता है कि अरे मैं इतना अनंत प्रत्यक्ष, इतना जोर आता है कि उपयोग में जो परोक्षता है विकल्प ज्ञान में, विचार ज्ञान में, वो विलीन हो जाती है, वो लंबा नहीं सकती। प्रत्यक्षता के प्रतिभास में बल इतना प्रत्यक्षता का आता है कि परोक्षता टिक नहीं सकती, परोक्षता को खत्म होना पड़ता है, प्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष उपयोग हो जाता है, उसको हम स्वानुभव आत्मज्ञान और संप्रेषण कहते हैं। तो ये वेद ज्ञान की भीतर की प्रोसेस है, स्वपर प्रकाशक के लेकर के स्वयं की व्यापकता को लेकर के, स्वयं की वेदकता को लेकर के, स्वयं की प्रत्यक्षता को देखना है, वहां तक पहुंचना है, फोर्थ स्टेज में एक ज्ञान बल पैदा होता है, उसको ज्ञान बल कहते हैं या उसको आत्मिक पुरुषार्थ सन्मुखता का कहते हैं, स्वसन्मुखी पुरुषार्थ होता है, उसकी दिशा उत्तरमुख रहती है और अनुभव का साक्षात्कार उपयोग का। बस बात है, आई जाता है एरिया इसमें, क्योंकि जितने क्षेत्र में वेदकता होती है उतने क्षेत्र में ही व्यापकता होती है, क्षेत्रता आई जाती है, ये वो पर्याय का अवलोकन नहीं रहता है, वहां द्रव आता है, इसलिए द्रव पूरा पिंड आ जाता है, उसमें सारा द्रव आ जाता है, इसलिए पर्याय की चैनल से हम द्रव में पहुंच गए। क्या हुआ, वेदन की जो पर्याय है इस चैनल से हम द्रव तक पहुंचते हैं, वरना द्रव का हमें विकल्प करना पड़ेगा या अनुमान करना पड़ेगा, लेकिन विकल्प और अनुमान में पहुंचने की ताकत नहीं है, योग्यता नहीं, अनुभव नहीं होगा। तो पर प्रकाशकता से पर को भिन्न जाने, और स्वयं की व्यापकता से भी भिन्न जाने, आगे बढ़कर के वेदकता से भिन्न जाने, और वेदकता में प्रत्यक्ष तौर से भिन्न जाने, ये प्रत्यक्षता को किस तरह ग्रहण करना, ये उनकी पद्धति है। प्रत्यक्ष तौर से हमें, हमको ही स्वयं प्रत्यक्ष जाने, तो ये भेद ज्ञान होता है, और भेद ज्ञान एक ही स्वानुभव का कारण है। तीन काल तीन रूप में स्वानुभव से लेकर सिद्ध पद की प्राप्ति में सिवा भेद ज्ञान कोई दूसरी विधि है ही नहीं। भेद विज्ञान तह सिद्धा, सिद्धा ये लिखना एक सौ इकतीस कलश समझदार भगवान, ये बात भेद ज्ञान की जो है, उसी तरह ये तो थियोरेटिकल बात हुई, उसी तरह उसको प्रयोग में लेनी है, और थियोरी और प्रयोग में जो अंतर है वो प्रयोग का प्रयास करने से मालूम पड़ता है, इसके पहले वो मालूम भी नहीं पड़ता। जिस तरह हम साइकिल पर बैलेंस रखना वो थियोरी है, दो पैर का विकल होने से वो गाड़ी की तरह पार्किंग होता नहीं कि उसको कहीं भी पार्क कर दे साइकिल को, साइकिल तो रहेगी नहीं खड़ी, तो दो पैर वाली चीज है। तो साइकिल पे हमें चलाना, बैठकर चलाना है तो बैलेंस रखना वो थियरी है, और बैलेंस कैसे रखना ये बिना प्रैक्टिस समझ में आता नहीं। बैलेंस रखना एक शब्द है, और बैलेंस वास्तव में रखना वो ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान वो शब्द से बहुत अंतर वाला है, एक नहीं है। और वो तो बिना प्रैक्टिस समझ में आएगा नहीं कि बैलेंस कैसा रखना, कैसे रखना, ये बिना प्रैक्टिस कभी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए परमार्थ के प्रकरण में तो ऐसा कहा गया है कि ये बात प्रयोग किए बिना वास्तव में समझ में नहीं आती। थियरी से जो समझ में आई वो वास्तविक समझ है ही नहीं। बैलेंस रखना वो वास्तविक समझ नहीं है। प्रैक्टिस करते वक्त बैलेंस रखने की कोशिश किया, उस वक्त जो बैलेंस करने का ज्ञान हुआ वही वास्तविक समझ है। ऐसी बात है, इधर भी ऐसी ही बात है। प्रयोग में बहुत अंतर है, हैं? बहुत फर्क है। थियरी और प्रैक्टिस में तो बहुत लंबा अंतर है। मैं कोई थियरी जानने से समझ लिया ऐसा जिसको संतोष होता है वो भ्रम में खड़ा है, एक नया भ्रम में खड़ा है कि हमने उसको समझ हो गई है, हम समझते हैं ऐसा जो मानते हैं। ये विषय जो है ज्ञान का, उसमें प्रयोग में प्रवेश करके फिर जो प्रश्न उठता है वो इस विषय की चर्चा का विशेष रूप से स्पष्टीकरण होने में निमित्त हो सकता है। इसके बिना इसकी चर्चा करना वो हितावह नहीं है, हित का कारण नहीं, क्योंकि जानकारी का विषय बना लेंगे। प्रयोग के विषय को भी हम जानकारी का विषय बना करके जानकारी के कोठड़ी में उसको रख करके ताला लगा करके चाबी को खोलेंगे। ऐसा है कि वास्तव में गुरु तो निर्देश करते हैं कि ऐसा है, कोई कार्य थोड़ा करता है कोई गुरु शिष्य का कार्य थोड़ा करेगा। वो पात्रता का लक्षण नहीं है। कि बेंसरी के वचनामृत में ऐसा आया कि पात्र शिष्य ऐसा समझता है कि मेरा कार्य मेरे पुरुषार्थ से मुझे ही करना पड़ेगा, गुरु तो मार्ग बताने वाले हैं, मेरा कार्य गुरु कभी करने वाला नहीं है, ऐसा समझने वाला ही पात्र है। ऐसी बात पात्रता में लिया है, वो बात पात्रता में लिया है। वो बेसरी के वचनामृत को क्लासिफाइड कर दिया है, किस वचन में पात्रता का विषय चलता है, किस ज्ञान का विषय चला है, किस विषय में क्या क्या चला है, 27 आई है न्यायों की, सभी विविधता को, विशालता का दृष्टिकोण को तो संक्षेप करते हैं तो पौना दो क्लास होता है, विस्तार करने में तो 300 विषय भी अधिक जाता है। ज्ञान इतना खिल गया था, समझ गया
સ્વરૂપ પાસે ચિંતન આઝાદી છે. કભી કભી ક્યા બાત નિકલ જાવે, કભી ક્યા બાત નિકલ જાવે, પડી ગયો નિકલ જાતી. જ્ઞાન સ્વપર પ્રકાશક હૈ, વેદન સ્વયં સ્વ કા હી વેદક, વેદન હોતા હૈ, પર કા વેદન હોઈ.
શક્કર કી મીઠાપન કી જાણકારી હોઈ હૈ, જ્ઞાન કા ક્યા શક્કર કા વેદન હોઈ નહીં સકતા. જ્ઞાન તો યહાં સે ભિન્ન પડ જાતા હૈ, વેદન સે જો ભિન્ન પડતા હૈ ઉસમે ફિર કહીં ધર્મ નહીં હોતા, ક્યોંકિ પર કો વેદન નહીં પડતા. કે એક સ્વાભાવિક પરિસ્થિતિ હૈ જિસકા ઉસમે હોઈ નહીં સકતા, ઓર વહીં સ્વભાવ ખુલ્લા હૈ, યહાં સે સ્વભાવ જાનને મેં આતા. ये बात है, ये तो प्रश्न किया था ज्ञान को स्वभाव रूप से कैसे जाने, यहाँ से तो ये बात कही है कि ज्ञान को स्वभाव रूप से कैसे जाने. इसलिए निर्जरा अधिकार में अमृत चंद्राचार्य जी ने ज्ञान वेदन को ज्ञान गुण कहा है क्या, और पहचान करने के प्रकरण में लक्ष्य लक्षण में ज्ञान प्रगट है, पर किससे प्रगट है, સ્વસંવેદન સે પ્રગટ હૈ, જે કો જાનતા હૈ ઇસલિયે જ્ઞાન પ્રગટ હૈ. એસા ડેફિનેશન મેં વો બાત નહીં લિયા, જ્ઞાન કી જ્ઞાન કી વ્યાખ્યા મેં વો બાત કો લિયા હી નહીં. વેદન કી પ્રધાનતા સે વો બાત કહી લિયા કે પરિચય જો પહેચાન હૈ વો વેદન સે હોતી હૈ, ઓર વો સ્વભાવ અંશ હૈ, વહાં સ્વભાવ ખુલ્લા હૈ, એસા સ્વભાવ હૈ, वहां प्रत्यक्षता पड़ी है, वेदन में प्रत्यक्षता है. वो जानपना तो स्थूल है क्योंकि वो ज्ञान विशेष में रहता है, वो सामान्य विशेष दोनों में रहता है, लेकिन हमारा परिचय ज्ञान विशेष से ज्यादा है. हमारा परिचय ज्ञान का जो है वो ज्ञान विशेष का, ज्ञान विशेष का ज्यादा है, और ज्ञान सामान्य को हम ज्ञान सामान्य का परिचय ही हमें नहीं किया तुम्हें, इसलिए हमें ज्ञान सामान्य जो है वहां तक उपयोग को ले जाना जब वेदन का पता चले. एक ही पर्याय का दो अंग है क्या, ज्ञान की जो एक पर्याय है उसमें ज्ञान विशेष और ज्ञान सामान्य जो एक ही पर्याय का दो अंग है. ज्ञान विशेष है वो बहिरंग है, और ज्ञान सामान्य है वो पर्याय का अंतरंग है. तो अंतरंग में वेदन है. अगर हम दृष्टिकोण से देखें, अब व्यू पॉइंट की बात आती है, दृष्टिकोण मैंने व्यू पॉइंट के ज्ञान का अंतरंग में अनुभव दृष्टि, अनुभव का दृष्टिकोण से देखे तो ज्ञान वेदन दूसरों का नहीं हो सकने से वो भिन्न पड़ जाता है. जो राग से भिन्नता नहीं हो रही है, और राग से भिन्नता करना हमको वेद ज्ञान में कठिन लगता है, तो इसी कारण से लगता है कि ज्ञान सामान्य तक ये अनुभूति है सो मैं हूं, ऐसा लिया वहां वेदन की बात लिया. सत्राचर तो अनुभूति मैंने अनुभव, अनुभव मैंने वेदन, अनुभव वेदन और भोगवता तीनों तीन शब्द है एक वेदन के लिए, तीनों शब्द में से एक बात एक एक भाव निकलता है. तो वेदन में तो दूसरा नहीं होने से भिन्न पड़ जाता है, और ज्ञान में एक नई प्रतिभाषित होता है, और एकत्व अनादि से बना बना रहा है, तो भिन्न पड़ने में कठिन पड़ता है. तो पूछते हैं तो राग जो ज्ञान में झलकता है वो ऐसे झलकता है कि जैसे मैं रागी हुआ, मैं क्रोधी हुआ, विराग हुआ, ऐसा अनुभव होता है। ज्ञान में तो राग होता ही नहीं, ज्ञान में तो ज्ञान ही होता है। तो वेदन में आने से पता चल जाता, करे ज्ञान में तो अकेला ज्ञान वेदन है। तो अंतरंग में अनुभव दृष्टि से देखने में आवे या अनुभव करने में आवे या अवलोकन करने में आवे तो ज्ञान और राग पूर्ण सहज हो जाता है। ये बात लिया है पंडित श्री राजमल जी ने संवर विचार के दूसरे कलक में लिया है। इसके सभी सुंदर का वो कलक है, ज्ञान का कलक, उसने बात लिया। अंतरंग सूक्ष्म अनुभव दृष्टि से देखा जाए क्योंकि ज्ञान सामान्य सूक्ष्म है, वहां वेदन भी सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म अनुभव दृष्टि से देखा जाए अंतरंग में तो ज्ञान और राग भिन्न भिन्न हो ही जाता है, करना पड़ता सहज हो जाता है। करना करना करने को जावे तो विकल्प हो जाएगा, भेद ज्ञान का विकल्प होगा, प्रयोग होगा, विकल्प वो भेद ज्ञान नहीं है। भेद ज्ञान प्रयोग की चीज है, विकल्प की चीज है ही नहीं। ऐसी बात, ये बात इस तरह से लेना। इसके ऊपर तो सारा ज्ञान का चैप्टर लिखा है वर्तमान स्कूलों में, लास्ट आर्टिकल जो है आपका वो ज्ञान का, उसमें सब बातें लिया है, बहुत सी बातें लिया है। 14 गुण स्नान में ज्ञान की कैसी परिस्थिति हुई है, रतुपयोग की कैसी परिस्थिति होती है, ज्ञान पर को नहीं जानता है तो क्या उसमें अपेक्षा है, पर को जानता है तो उसमें क्या अपेक्षा है, सब बातें लिया है। सबकी चर्चा कभी पड़खों की चर्चा कर लिए एक ही प्रकरण, और ज्ञान के कितने कितने धर्म होते हैं वो भी लिखे हैं। ज्ञान को भी ज्ञान से अच्छी तरह नहीं समझे तो फिर दूसरी चीज को क्या अच्छी तरह से समझेंगे। ज्ञान को मैंने ज्ञान अपने को ही नहीं समझे अच्छी तरह से तो फिर दूसरी चीज को क्या अच्छी तरह से। हमारी चर्चा बहुत बातें चलती है इस पर, तो बात नहीं होगी। ज्ञान का दो रूप है, ज्ञान का दो रूप है, एक ज्ञाकार है और एक ज्ञानाकार है। तो ये की आकृति रूप होता है उस पर्याय को ज्ञाकार ज्ञान कहते हैं, है तो ज्ञान, लेकिन नाम उसका ज्ञाकार ज्ञान है। क्योंकि जैसे ज्ञ की आकृति होती है वैसा ही ज्ञान में एक आकार पैदा होता है। मुहूर्त मुहूर्त जैसा आकार आता है, काला पीला होता है काला पीला आता है, जैसा ज्ञ होता है वैसा ही छोटू पड़ता है ज्ञान में। ज्ञ को पता होवे कि नहीं हो, ज्ञान में तो फोटू पड़ जाता है, बिंब जिसको कहते हैं। इसलिए ज्ञ को शास्त्रकार बिंब कहते हैं और ज्ञान को प्रतिबिंब कहते हैं, तो ज्ञान आता है। और ज्ञान सामान्य ज्ञानाकार है, जो 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 ऐसे धारा चलती है, जातृत्व धारा कहते जातृत्व धारा, वो एक आकार ज्ञान है, उसमें कोई आकृति नहीं है। और वहां वेदन वहां है उस जगह पर, वहां स्वभाव खुला है। मिथ्या श्रद्धा की मिथ्यावस्था में श्रद्धा गुण का खुला स्वरूप, तो दूसरी पर्याय है चारित्र गुण में विकराकता नहीं होने से और राग होने से अकेला मुमुक्षु को चारित्र गुण का स्वरूप समझ में नहीं आता। तीन गुण में से एक ज्ञान ही ऐसा है कि जहाँ स्वभाव खुला है, इसलिए ज्ञान से ही आत्मा पहचाना जाता है। बिना ज्ञान आत्मा पहचाना जाता, इसलिए कहते हैं ज्ञान से ही आत्मा, क्योंकि स्वरूप है आत्मा। ज्ञान सामान्य लेना, ज्ञान विशेष में तो विविधता बहुत है, पर स्वरूप तो एक रूप है, उसमें तो विविधता कोई है ही नहीं। सामान्य पर्याय में विविधता नहीं है तो शक्ति में तो विविधता आएगी कहाँ से, वो तो सामर्थ्य रूप है। हाँ, ज्ञान सामान्य पर्याय, ऐसा ही सामान्य स्वरूप द्रव, दोनों सामान्य हो गया सदृश। इसलिए सदृश होने से, व्यक्त सदृश होने से अव्यक्त का पता चल जाता है कि ऐसा ही है। तो उसमें फिर शंका नहीं होगी, अनुमान नहीं होगा, कल्पना नहीं होगी, नाटक बच जाते हैं और निशंकता आ जाती है। निश्चय से, निर्णय से निशंकता आ जाती है और प्रत्यक्ष वेदन तो अनुभव भी चाहिए। स्मृति में लिखा स्पष्ट परमार्थ की स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति, उसको हम दूसरा संकेत कहते हैं। जो संकेत का अनन्य कारण है और कारण कार्य से प्रतिबद्ध होने से कारण में कार्य का उपचार करके उसको ही संकेत कहने में आया। मामूली इच्छा रूप भावना है, लेकिन भेद पूर्वक जो अपूर्व भावना पैदा हो जाती है, ऐसी भावना लगन रूप भावना नहीं है। लगन का अभाव होने से कार्य का प्रारंभ प्रैक्टिकल साइड से नहीं होता। जो कार्य का प्रारंभ प्रायोगिक रूप से होना चाहिए, वो प्रारंभ ही नहीं होता। भाव में भी क्या होता है, लगन होती है तो कार्य जल्दी संपन्न हो गया, ऐसा भाव रहता क्या नहीं लगन में। तो वो भाव से भाव को कार्यान्वित करने का पुरुषार्थ जगेगा उसकी स्थिति, वरना तो भाव भाव रह जाएगा, उसका कोई आगे का कार्य नहीं होगा। भिन्न ज्ञेय है, हाँ तो ऐसा जानना है कि ज्ञेय के कारण से ज्ञान नहीं, ज्ञान के कारण से ज्ञेय नहीं। ज्ञानाकार कहो तो वहां भी ज्ञान ही को कहना है और ज्ञाकार कहो तो भी ज्ञान को ही कहना है। वो तो उसका दो रूप है तो दो रूप से उसको कहते हैं, तो सर्वार्थ सिद्धि में उपास लिया है आचार्य महाराज ने। सर्वार्थ सिद्धि में वो बात लिखी है कि ज्ञान का दो रूप है, एक ज्ञाकार है और एक ज्ञानाकार है। ऐसा सूत्र पड़ा है तो नया कार्य जो है उसमें भिन्न गेय है, वो भिन्न गेय है, रुबी देव के आत्र से उसने भिन्न गे है, ऐसा ज्ञान की जिसको पकड़ है उसको भिन्नता आएगी, पर जिसको ज्ञान की पकड़ नहीं है उसको गे में एकत्व हो जाएगा, जानते ही एकत्व हो जाएगा, एकता का विकल्प नहीं करना पड़ता एकत्व अवस्था में, और ये जानते ही उसमें एकत्व हो जाता है कि मुझे मिठाई अच्छी लगी, जानते ही एकत्व हो जाता है। और जिसको ज्ञान की पकड़ है उसको भिन्न रूप में जानने में आता है। तो मुमुक्षु ये कहेंगे कि हमको ज्ञान की पकड़ कहां से हो सकती है, तो ज्ञानी को हो सकती है, देव से बैठ सूक्ष्म अनुभव दृष्टि से ज्ञान सामान्य को अवलोकन करे तो उसमें वेदन से व्यापकता से प्रत्यक्षता से ज्ञान की पकड़ नहीं है तो भी आ सकती है, नहीं पैदा हो सकती है। ये भेद ज्ञान का कार्य है, इस तरह भेद ज्ञान करना है। करने के लिए अच्छी बात है, शास्त्र की वो बात है, शास्त्र पकड़ करने के लिए तो वो बात सही है कि जो जान रहा है वो जानने वाला ही जान रहा है, और उसमें जानने वाले में दूसरा कुछ है नहीं, निज में निज को देखना है, निज में पर को नहीं देखना है, पर का प्रतिबिंब होते हुए भी निज में पर को नहीं देखना है, तो दृष्टिकोण वहां है, निज में निज को देखने का दृष्टिकोण है, तो दृष्टिकोण से मुख्य करने से प्रतिबिंबता या विज्ञान होता है। तो उसमें क्या है कि एक वैचारिक परिस्थिति है, क्या एक वैचारिक परिस्थिति है, उसको हमें प्रयोगान्वित करने के लिए ज्ञान वेदन तक सूक्ष्म अनुभव दृष्टि से जाना पड़ेगा, ज्ञान सामान्य तक, तभी वेदन में दूसरा नहीं होने से ये बात साफ हो जाती है कि निज में निज है, निज में पर नहीं है, वो तो सिर्फ ज्ञाकार था, वो ज्ञानाकार ही था, वो ज्ञान की पर्याय थी, कोई की नहीं कुछ ऐसा। हाँ, ज्ञाकार भी ज्ञान की ही पर्याय है, ये की पर्याय है ही नहीं, ज्ञान विशेष है, ज्ञान के विकारी किए नहीं, तो केवल ज्ञान तो अनंत विकारी हो जाएगा, केवल ज्ञान है वो अनंत विकारी हो जाएगा, और तो 14 कलश है जो अपने चादवाद अधिकार के परिस्थिति में, उसमें तो राजमल जी ने महाभिक्र की एक आसक्ति है वेदांत में आई है, कि वेदांती लोग ऐसा लेते हैं कि हमको हमारे ज्ञान में से ज्ञाकार जो होता है वही निकाल देना है, क्यों कि गेय के जाने तो विकार हुए ना, हम गेय को जाने तो विकार हो जाता है और गेय को नहीं जाने तो विकार नहीं होगा, इसलिए ज्ञान में से ज्ञाकार को ही खत्म करो। तो कहते कि ये गलत पद्धति है, तो तू ज्ञान को खत्म कर देगा, और ज्ञान तो खत्म होने वाला नहीं है, तेरा जो समझ है वो मिथ्या हो जाएगी, श्रद्धा भी मिथ्या हो जाएगी और ज्ञान भी मिथ्या हो जाएगा। तो उसने ऐसा लिया है कि जो ज्ञान में से जीव को निकाल देना चाहता है वो मिथ्या दृष्टि है। क्या कहते हैं, ज्ञान में से ज्ञाकारों को मिटाना जो चाहता है वो मिथ्या दृष्टि, ऐसा कहते लिया है। बहुत साफ है वो अधिकार, बहुत साफ है, सुपर प्रकाश को समझना हो, उसमें ये त्यागवाद अधिकार है, तो है तो ये कलश सर्व विशिष्ट के लिया है उन्होंने। दो सौ 12 में है, फिर 215 में है, फिर जो है 250 में है, कितनी जगह आता है, और वहां तो पशु कहते हैं, 250 से तो फिर पशु कहने लगे कि ये पशु है, समझता ही नहीं है ज्ञान को, फंसा लेते हैं। तो पशु नहीं समझता है वैसे, वो भी नहीं समझता है। पढ़ते हैं तो जो भी चीजें चर्चास्पद हुआ है तो उसका तो नोट कर लेते हैं, डीप स्टडी करना पड़ता है तो ध्यान से निकलता है। पशु रहस्य निकालना चाहता है, क्या प्रवृत्ति करता है, બધા કળશમાં દ્રવરૂપ અને પર્યાય રૂપ છે એ વાત કીધી છે. भावार्थ किस प्रकार है कि देह को जानता है ज्ञान, उसको एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव स्वभाव नहीं मानता है, अशुद्धपणे रूप मानता है. एकांतवादी का अभिप्राय ऐसा है क्या, ज्ञान में ज्ञान जब देह को जानता है तो अनेक आकृति रूप होता है ज्ञान विशेष, तो उसको स्वभाव नहीं जान करके उसको एकांतवादी मिथ्या दृष्टि भी अशुद्ध हुआ ऐसा मान लेता है. अरे ये नहीं जाना, नहीं को जानते तो अशुद्ध हो जाता है ऐसा लगता है. ये मिथ्या भ्रम है. ज्ञान में तो स्वच्छता है इसलिए तो प्रतिबिंब आता है. ये ज्ञान की स्वच्छता तो ज्ञान का एक धर्म है, स्वभाव धर्म है वो तो उसको ये को जानने से अशुद्धता आई ऐसे मानने वाला मिथ्या दृष्टि ये बात देते हैं. ऐसा ख्याल रह गया है कि कोई बीच में आया है, वो कोई अंतिम वचन है कोई किसी कलश का, ऐसा स्मृति में रह गया है. कभी कलश का वो आखिर का क्या है वो भावार्थ इस प्रकार है, ज्ञान वस्तु ज्ञेय के प्रदेशों को जानपना से रहित होवे तो शुद्ध होवे. क्या ज्ञेय को नहीं जाने तो शुद्ध और जाने तो अशुद्ध, ऐसा मानता है एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जी. तो बचपन में उस तरह से क्षेत्र अपेक्षा किया है. पर्याय रूप जो ज्ञेय वस्तु के प्रदेशों को जानते हुए होती है अनेक आकृति रूप ज्ञान की परिणति, उस रूप परिणमती जो ज्ञान वस्तु उसको ऐसा ज्ञान अशुद्ध है, ऐसी बुद्धि कर त्याग करता हुआ उसको त्याग करना चाहता है. ज्ञेय आकार मुझे नहीं होना, मेरे में ज्ञेय आकार नहीं होना. गुरुदेव तो उसको बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करता है, तेरे ज्ञान का स्वकाल ऐसा है जिस काल में जिस प्रकार की ज्ञान में आकृति उठी गई की वही तेरा ज्ञान का स्वकाल है. तो एक पर्याय को हटाना चाहता है, पूरी वस्तु को स्वच्छा में नाश्ती हो जाती है. तारी स्वकाल के पर्याय ऐसा जानने का ही तारा काल है, तेरा काल है. तुम देह को भी मत हटाओ और ज्ञान को भी मत हटाओ, उसी का नाम ज्ञाता दृष्टा रहना है. ज्ञान को तो हटा ही नहीं सकते हो तो कहते, लेकिन वो कहते मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं जानना, मैं ऐसा मुझे नहीं जानना, वो मैं नहीं देखना चाहता. ये ज्ञान ज्ञान को हटाना चाहता है और पर पदार्थ को हटाना चाहता है, आगे पीछे करना है, वो ज्ञेय को हटाना चाहता है. दोनों प्रकार की वृत्ति मिथ्या है, ऐसा कर ही नहीं सकता।